وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے، مگر وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے. وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے معصوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم ان کو حاصل نہیں، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وَإِنَّ ظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم ان کو حاصل نہیں، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. آپ نوٹ کر رہے ہیں، سورت حجرات میں زن کی بات ہوئی تھی نا، اس زن نبو کثیر من الزن، اور اب ادھر بھی پچھلی سورت میں بھی آپ نے زن کی بات کی. اٹکل بچو، یہاں بہت ہی اہم بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے کچھ چیز سوچ لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہوگا. کچھ کہتے ہیں بس دعائیں کرتے جائیں گے جنت میں چلے جائیں گے، کچھ کہتے ہیں صرف ہم اللہ کا نام لیتے رہیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو جنت میں جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں حق آتا ہے وہاں گمان کی بات نہیں ہے. آپ اس کو اس طرح لکھ لیجئے کہ جیسے آپ کنفرم ٹکٹ رکھیں یا آپ چانس کا ٹکٹ لیں، کیا دونوں صورتوں میں آپ واقعی سفر کریں گے؟ ایک تو اللہ کا حکم ہوگا تو کریں گے نا، لیکن نارملی آپ دیکھیں جس کے پاس کنفرم ٹکٹ ہوتا ہے اس کے پاس کلیم ہوتا ہے، اس کی ٹکٹ کوئی اور لے نہیں سکتا، اس کی سیٹ لے نہیں کوئی سکتا، الا یہ کہ وہ بہت لیٹ ہو جائے. چانس والے کو آخری وقت تک دھڑکا لگا ہوتا ہے. اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میں نے جنت کا کنفرم ٹکٹ لیا یا چانس کا؟ کبھی آپ کسی سے کہ تم سامان لے کے چلے جاؤ ایئرپورٹ میں، دیکھنا ٹکٹ مل جائے گا. بھائی کیسے 30-30 کلو کے اور 25-25 کلو کے سوٹ کے سجا کے بنا کے ڈھیر بھر کے جاؤں، پتا چلے سوری نہیں ملے گا. ہم تو ایک چھوٹا سا سفر بھی چانس کر نہیں کرتے، اس کے لیے کنفرمیشن چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ جب بچوں کے ساتھ سفر کرنا ہو. تو کیا میں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے جنت کا کنفرم ٹکٹ لے لیا؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے اور آپ کا میرے سے. کفار ادم ممت اللہ، بس اے نبی، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. کیا پتا چلا، جب کسی کو دنیا میں انڈلج دیکھیں، ڈوبا ہوا ہے سر سے پاؤں تک، پھر اس پہ زیادہ محنت نہ کرے، اس لیے کہ اس شخص نے آپ کی بات سننی نہیں. پہلے اس کو دنیا کے سحر سے نکالیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو دین کی بات بتائیں. ذالک مبلغہم من العلم، ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے. مبلغ کہتے ہیں بلغہ سے، یعنی سارا علم جو حاصل کر رہے ہیں اس کا اینڈ کیا ہے کہ دنیا مل جائے. میں سوچتی ہوں آج کے ایجوکیشنل سٹائل پہ یہ بات بہت فٹ ہوتی ہے. ساری زندگی جو تعلیم لوگ حاصل کرتے ہیں نا، اس کا اینڈ کیا ہے؟ دنیا بن جائے. پھر دنیا تبھی بنتی ہے، اتنی بنتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. فرمائے، نہ ربا کا وہ عالم ابھی من دلن سبیلی، یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے، اور زمین آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے. تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے، اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا، بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے سے پرہیز کرتے رہے، الا یہ کہ کچھ کسر زد ہو جائے. تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تم کو پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بھی جنین ہی تھے، فیٹس تھے، تب بھی اللہ آپ کو جانتا تھا. بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. یہ آیت ہم نے آیت امم میں بھی کی. اس میں دیکھیں چند باتیں ہیں. پہلی بات ہے کبائر الاسم اور فواحش اور لمم، تین چیزیں ہیں گناہوں کی. گناہوں کی مختلف اقسام جو ہوتی ہیں نا، اس میں کچھ کو تو کبیرہ کہہ دیا، یعنی جس میں جان کے پڑھنے والا تو سمجھے کہ اپنے ایمان کو ختم کر لیتا. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، بچ نہیں پاتے، کبھی بچے کبھی چھوڑ دیا. فواہش میں وہ چیزیں ساری آ جاتی ہیں جو انسان کے رومانس اور اس کی یعنی سیکس کے ساتھ اور دنیا میں جو کرپشن ہے اس سے متعلق ہے، اور فخر چیزوں میں اللہ کے ساتھ تعلق کا ٹوٹنا بھی آ جاتا ہے. لمم کیا چیز ہوتی ہے؟ تھوڑا سا لمم کا لفظ ہے کہ لما، روکنا، چھوٹا کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں، ٹنگ سلپس. اب میں پڑھا رہی ہوں، کہیں میرے سے ٹنگ سلپ ہو گئی، اللہ معاف کر دے گا، ایڈیٹنگ والے اس کو نکال دیں گے، اللہ بھی معاف کر دے گا، دیٹس اٹ. آپ کوئی کام کرنے بیٹھے اللہ کے لیے نکلے، کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی چھوٹی موٹی ہوگی، اللہ معاف کر دے گا. لیکن یاد رکھیے کہ جب تک ہم بڑے گناہوں سے نہیں رکیں گے، ہمارے چھوٹے گناہ معاف نہیں ہوں گے. دعا کیجئے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ سب سے معاف کر دے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے لیے یہ دروازے کھول رہا ہے. कि हम अपनी छोटी बड़ी नेकियों को जमा कर सकें और उसके बाद अल्लाह ताला के सामने पेश कर दें। फला तो जक्कू अनफुसकुम में क्या बता दिया कि अपनी तारीफें ना किया करो, मैं बड़ी नेक, मेरा खानदान बड़ा नेक, मेरे बच्चे बड़े अच्छे। कुछ सिस्टर्स की तो आदत ही होती है जहां बैठती हैं अपने ही गुनगाने शुरू हो जाती हैं, तस्बीह फिर होती हैं अपने बच्चों के नाम की। इसकी अच्छी बात है, अच्छा हो तो उसकी तारीफ करें, लेकिन चापलूसी में ना ले आए, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं वो बेहतर जानता है कि वाकई मुत्तकी कौन है। अगली आयतों में बहुत ही ज्यादा डराने वाली बात है कि इंसान एक नेकी करे और नेकी करते करते रुक जाए तो उसका क्या हाल है। इस दुआ के साथ पढ़ते हैं कि अल्लाह हमें अपनी नेकियों को रोकने या ख़त्म करने और कम करने की तौफीक ना देना, और आज जो नेकी करें कल की नेकी उससे बड़ी हो और मरते दम तक हम इन नेकियों में चलते ही जाएं। फरमाया अफरैत अल्लज़ी तवल्ला वाता क़लीलन वअकदा। फिर ऐ नबी तुमने उस शख्स को भी देखा जो राह खुदा से फिर गया और थोड़ा सा देकर रुक गया। थोड़ा सा देकर रुक जाना किस बात की अलामत है कि वो वफादार नहीं है। देखिए हकीकी मुत्तकी वही है जो आखिर तक जाए। हम अल्लाह के काम करना चाहते हैं, फिर बहुत बड़ी नियतें करते हैं, फिर थोड़ा सा बाहर निकलते हैं क्लासरूम से ना, गाड़ी में बैठते वो नियत थोड़ी सी छोटी हो जाती है, फिर घर जाते हैं, फिर सोचते हैं, फिर देते देते रुक जाते हैं, कहते हैं जरा मशवरा कर लें। बस मशवरा किया तो काम गया, फिर सोच लो ये भी तो है, अपने भी तो काम है, बच्चों के भी, बड़ों के भी, चले देखते हैं फिर क्या होगा। ये अकदा की कैफियत जो है ना, ये बंदे के लिए जहरे कातिल है। नेकी के काम दरियाओं की तरह होने चाहिए, बस बहते जाए। आप निकाल लेंगे जितना नेकी के काम के लिए वक्त, बाकी वक्त में बरकत हो जाएगी। आप इसके रास्ते की रुकावटों को निकालने बैठे रहे, बस हम बड़ी बड़ी नेकियों के इंतजार में संभालते रहते हैं जान माल और वक्त। अल्लाह कहते हैं इस क्लॉट को निकालो, तुम देखना इसके पीछे से कितनी खैर आ जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें काम करने वाला बना दे। हम सब अपनी कोशिशों का रुख देखें, क्योंकि अगली आयतों में अल्लाह ताला बहुत ही प्यार से हमें एक चीज की खबर देते हैं, और वो क्या आइंदहु इल्मुल गैबी फहुवा यरा। क्या उसके पास गैब का इल्म है कि वो हकीकत को देख रहा है? क्या उसे उन बातों की खबर नहीं पहुंची जो मूसा के सहीफों और उस इब्राहिम के सहीफों में बयान हुई है जिसने वफा का हक अदा कर दिया। हाईलाइट करें, इसको याद कर ले। व इब्राहिम अल्लज़ी वफा, और इब्राहिम तो वो था जिसने वफाओं का हक अदा कर दिया। बा वफा बनना है। फिर इब्राहिम का नाम आ गया सूरत में, पिछली सूरत में भी पढ़ा था। कोई सूरत शायद इब्राहिम के जिक्र से खाली गई होगी, क्यों? उन्होंने वफाएं की। हम बेवफाई करके इब्राहिम वाले टाइटल तो नहीं पा सकते। और कैसे वफा की? जब जिस जगह जिस चीज का तकाजा किया इब्राहिम हाजिर थे। व इस काल लहु रब्बुहु अस्लिम, काल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। कल्बे सलीम लेकर आए, बेटे की गर्दन पे छुरी चला दी, जान माल के तोहफे पेश कर दिए। तो अल्लाह ताला हम सबको कहते हैं वो इब्राहिम कर गए, तुम भी कर सकते हो, क्योंकि कल एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन तुम इस हकीकत को याद करोगे। क्या? अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। मेरा आपका बोझ कोई दूसरा नहीं उठाएगा। अपने गुनाहों के पटारे खुद उठाने पड़ेंगे, अपने माल के हिसाब खुद देने पड़ेंगे। देखिए एक सूरत है कि इंसान अपने पीछे बहुत माल छोड़ के जाए, कई खतरे हैं। औलाद को मिलेगा तो झगड़े होंगे साथ, और वो एक दूसरे की गर्दनें काटने को तैयार है। फिर पीछे रहेगा तो हसद होगा, और पीछे छुटेगा तो हिसाब होगा, वहां जाके लाइन में लग जाएगा क्या क्या छोड़ के आए हो। इसकी बरक्स जिंदगी में औलाद की अच्छी तरबियत करें, उनको अपने माल में से इतना दे दें कि वो खुद अपने पाँव पे आपकी जिंदगी में खड़े हो जाए। पता चला कि आपने दुनिया से जाने तक आपने अपने बच्चों को कभी इंडिपेंडेंट किया ही नहीं है। अब क्या हुआ, जब आप अपने बच्चों को फुल हैंड कर चुके होते हैं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद भी कमाने लग जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अब आप दुनिया से जाने के करीब हैं कि नहीं, ये तो आप कैसे कह सकते हैं करीब है नहीं। आप कहेंगे नहीं, मैं 70s की हो गई हूँ ना, मैं जाने वाली हूँ, तो या तो 40s का भी किसी को नहीं पता, 30s का भी नहीं पता। फिर इसी तरह से आप क्या तैयारियां करते हैं कि कहीं जाने वाला हल्का हल्का सामान हल्का करने जाते हैं ना, ये समेट दूं, ये नहीं चाहिए, ये कर लूं, वो कर लूं, चलो पहले कोई जा रहा है तो उसके हाथ आके भेज दूं। इंसान की जिंदगी में जब तब्दीलियां आए ना, आपका जिंदगी का कोई एक रुख बदले, अल्लाह ना करे शौहर थे चले गए, बच्चा था चला गया, कोई भी एक से एक दीन आ गया, जब कोई टर्निंग पॉइंट है ना, तब सोचें इस वक्त की जरूरत क्या है, और आप देखेंगे अल्लाह आपसे फैसले कराएगा। मैं जब शायद पे आती हूँ और ये जो बात आपसे कर रही हूँ, मुझे एक सिस्टर याद आ जाती है, बहुत प्यारी, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे। कुरान किस तरह सीना खोलता है कि उन्होंने अपने आप को एक दिन किसी भी तरह से प्लेटफॉर्म दिया और उन्होंने कहा कि हमारा एक घर है तो हम स्कूल को देना चाहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं जानते तो आप क्या सोचते हैं, मेरे जिन में हमेशा यही आता है, किसी का भी मैं सोचूंगा कि तू देखना इसकी औलाद नहीं होनी, तो आप सोच रहा है कि अपने हाथ से दे दो, बाद में पता चला वो भाई बहन ले गए। लेकिन मेरे लिए हैरत गुम करने की वो बात थी, बेटे बेटियां सब है। मैं परेशान हो गई कि इनके बच्चे भी हैं सब है, फिर भी ये दे रही है। लेकिन वो जो लंबी कहानी, और ये एक कहानी नहीं कईयों की बातें मेरे पास, अपनी जिंदगी, वो कहते हैं बच्चों के पास बहुत है। फिर हमने उनसे पूछा आपने अपने बच्चों से पूछी है ये बात, वो कहते हैं जी हमारे बच्चे कहते हैं अम्मी अबू जो मर्जी दे दें हमें इसकी जरूरत नहीं है। और मैं ऐसी माओ को जानती हूं कि जब कोई दीन का काम आता है ना तो ये उनका हिस्सा है और दूसरे हाथ से दूसरा पकड़ाते हैं लिफाफा, कहते हैं ये वो फलां बेटे ने भेजा वहां से, मैंने उसको फोन किया था, अच्छा अम्मी मेरा भी इतना डलवा दो। वो को थोड़ा नहीं होता, हमारी तरह वो हाथ का मैल नहीं है, छोटे छोटे बत्तियों के नोट बनाकर हम अल्लाह को पकड़ा दें, अल्लाह को हमारे माल की जरूरत नहीं है। इस तरह मुझे हैरत होती है, क्यों? इसलिए कि जब इंसान को इस बात का यकीन आता है कि दुनिया में दिया तो सदका जारी है, बाद में हुआ तो हिसाब भी और विरासत भी है। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए और कुछ नहीं मगर वो जिसकी उसने कोशिश की। इसको हाईलाइट करें, 3 सेकंड तक सोचें, और हम सब सोचें हमारी कोशिशों का रुख किधर है। बच्चे जिनके पहले ही बहुत है, अब उनके लिए और छोड़ना चाहते हैं कि अल्लाह का दीन जो मस्कीन यतीम गरीब तरफ तड़पता हुआ भूखा नंगा दीन, उसको हम कहते हैं छोड़ो, देखेंगे अगले साल की जकात में क्या बचता है। हर एक को जो चीज दिल को लगी होती है ना, वही उसका बेबी होता है। हम अपने बच्चों को सारी जिंदगी देते हैं माशाल्लाह, और अल्लाह मना नहीं करता, लेकिन आप सोचिए कभी हमने गिना, कभी ताना दिया? लेकिन जब वो बच्चे, इसके बरक्स आप किसी का बच्चा अडॉप्ट कर ले, आप एक वक्त आता उसको भी अपना ही समझते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने अपने दूसरे बच्चे अडॉप्ट किए और फिर उसको बहुत दे दिया, ठीक है उनका दिल जुड़ा हुआ था, उनको उन्होंने दे दिया, उनका माल है, आपको मुझे उस पर एतराज करने की कोई बात नहीं है, जिंदगी में जो मर्जी कर दें। खुद से पूछिए कि मेरी जिंदगी में अल्लाह का दीन क्या एक बच्चे की भी हैसियत रखता है? मैं इस वक्त ना तो ज़कात की बात कर रही हूँ, ये हमने अपने लिए देनी है, ये इस वक्त बात बोझ की भी नहीं, ये मोहब्बत की बात पूछ रही हूँ। जिस मेहमान से आपको मोहब्बत होती है आप दिल जान से उसके लिए लगा देते हैं, खिलाते पिलाते सजाते संवारते, वो शर्मिंदा होता है, आप कहते इट्स माई प्लेयर, इट्स माई प्लेयर, इट्स माई प्लेयर। इसके नीचे लिख लीजिए क्या दीन इट्स माई प्लेयर के जिम्मन में आता है? जिस वक्त उम्मत मुस्लिमा दीन की चीजों को इट्स माई प्लेयर समझ के दे, और दीन वाले इट्स ओके आपका मामला, जाइए दे दीजिए, अल्लाह आपको दुआ दे, अल्लाह आपके लिए बेहतर करे, इट्स गुड, तब उम्मत बदलेगी। कि मैं किसी पे तनकीद नहीं करने लगी, जैसे लोग होते हैं वैसे हालात होते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया कि पीछे पढ़ पढ़ के गरीबों को लेना पड़ता है दीन के लिए, लोगों से गरीबों से समझ गए आप कौन से गरीब, दीन वाले गरीब, क्योंकि उनको पूरा साल मस्जिदों के बिल भी तो देने हैं, वो फिर पीछे पढ़ के लोगों से लेंगे। जब वो बेचारों ने अपनी जरूरतें इस तरह पूरी करनी है, लोग क्यों नहीं देते? एक ऐसी जगह थी कहीं, मुझे याद है, ये लंदन की बात है, बेहतरीन हॉल था, यानी कोई उन्होंने किसी चीज का फंड रेजिंग डिनर रखा तो मुझे भी उन्होंने किसी के नाते ऐसे इनवाइट कर लिया कि थोड़ा सा बीच में उर्दू का आप भी बोल दें, इंग्लिश का क्राउड था कुछ था। इतना खूबसूरत हॉल, इतने अच्छे खाने, प्रोटोकॉल सब कुछ, और सिर्फ लेडीज फंक्शन था, फीमेल था, आई थिंक 300 के करीब लोग होंगे। उसके बाद क्या हुआ कि खाए पिलाए बातें, उन्होंने अपनी एंटरटेनमेंट भी बड़ी की, जो यूथ का स्टाइल होता है, मुझे वो भी कुछ समझ ना आया, इट्स फाइन, होता रहा होता रहा। उसके बाद बिलीव मी जब उन्होंने फंडिंग की बात की ना, ओनली 8,000 pounds उन्होंने टारगेट बनाया। 8,000 यहाँ के कितने होंगे? 10,000 नहीं नहीं 12,000 लोग, कितना को है? यकीन करें 300 लोगों में वो 8,000 नहीं जमा हो रहा था, औरतें थी सब, ग्रुप था छोटा सा, तो उन्होंने अरेंज किया हुआ था किसी के लिए, दे वर बेगिंग। साथ हमारे जो साथी हैं वहां वो भी थी, तो मैंने उनसे पूछा आप इजाजत दें, आप नूरुल कुरान की तरफ से ना इनको दे दें, चले हमारे हाथ में ना भी इतना, मेरा दिल चाहे कि मैं पकड़ के उनको कहूँ कि $8,000 का चेक पाउंड का दे दो, कि जाओ ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको मिला, मुबारक हो, लोगों को छोड़े। मुझे रोना आ रहा था। फिर मैंने बहुत सोचा, बाद में भी सोचा कि आखिर वजह क्या है। खाया, खाना, बोले, सब कुछ दिया, कुरान नहीं है। और मैंने सिर्फ चंद मिनट बात की उनसे, जो भी मैंने करनी थी, कुछ उर्दू का क्राउड था। तो बाद में उन्होंने कहा कि आपने जो बात की है ना, उसके बाद हमारा भी दिल चाहा कि हम कुछ दें। याद रखिए, इस कुरान से काट देंगे ना लोगों को, तो आपको चंदे मांगने पड़ेंगे। अगर आप चंदा मांगने की बजाय लोगों को इस वक्त में कुरान पढ़ाना शुरू कर देना, तो फिर आप नहीं कहेंगे कि हमें दो, वो आके कहेंगे यस सलू न कमाज युनफिकुन। दो दफा सूरह बकरा में आप पढ़ चुके हैं, अल्लाह के नबी आपसे सवाल करते हैं क्या खर्च करें। सहाबा ऐसे लगते हैं जेबों में नोट डाल के लाते थे और आके कहते थे अल्लाह के नबी बताएं कहाँ खर्च करें, क्या करें। ये है दीन का मिजाज। पैसा कोई दीन वाले को मांगना चाहिए किसी से? हाउ इज इट? ये तो एक सर्विस होती है कि हम ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं, अगर आपको अपने माल का कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, मोस्ट वेलकम, आपका अल्लाह से ताल्लुक है, दैट्स इट, हो गई बात, खत्म हो गई बात। जब ये फीलिंग आती है ना हमें आपके माल की जरूरत है, तो लोग डिफेंसिव होते हैं। तो गलती दोनों तरफ है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम ऐसी गलतियों से बच जाएं। तो कोशिशें आज जिंदगी में करनी है, हम जिस चीज को अपनी जिंदगी के बाद के लिए चाहते हैं ना, वो जिंदगी में करें। मैं कभी अपने हस्बैंड से कहूँ ना कि अच्छा ये चीज मेरे बाद दे दीजिएगा इसको या उसको, ऐसे कभी लाड में बात करता, कहते आज ही दे दो, मगते आप तो मुझे फौरन ही मार देते, आज ही दे दो, जो कल देना आज ही दे दो। और सच्ची बात है आज ही दे दे। यकूलुल अब्दु माली माली माली, बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल, लेकिन माल उसका वही है जो उसने खा लिया और खा लिया, खुद पहनी है, अच्छा पहन लीजिए, इस्तेमाल कर लें, जाया ना करें, और खा लें, अच्छा खा लें, और उसके बाद अपने हाथ से अल्लाह की अदालत, अल्लाह की तिजोरियों में जमा करा दें, का बाकी तो सब वारिसों का है। क्या होगा जब खुद ही लेके जाने वाले, उस वक्त अगर जाके कहेंगे उसको दे दो उसको दे दो, तो वो तो कहा उनको मिलने ही वाला था। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दिल से माल की मोहब्बत निकाल दे। अल्लाह हमें माल दे पर माल की मोहब्बत ना दे। वन नसायहु सौफा युरा, और ये कि इसकी सही अनकरीब देखी जाएगी, इसकी पूरी जजा उसे दी जाएगी, और ये कि आखिरकार पहुंचना तेरे रब ही के पास है, और ये कि उसी ने हंसाया और उसी ने रुलाया। इस आयत पे हंसे भी और रोने की शक्ल भी बनाए। अगर आपने स्माइल दिया ना, तो ये अल्लाह ने आपको तौफीक दी, और अगर दिल के अंदर आंसू गिर रहे हैं ना अपनी हालत पे, तो अब का वल्लाह ही खुशियां और गम सिर्फ अल्लाह देता है। अगर मैं और आप इस सिफत को अल्लाह की समझ जाएंगे ना, तो सबसे ज्यादा उसको खुश करेंगे। हम दुनिया वालों को हंसाने के लिए अल्लाह को नाराज कर दें, और दुनिया वालों के रुलाने के खौफ से अल्लाह को नाराज कर दें, कभी खैर नहीं मिलेगी। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में इस बात का यकीन दिला दे कि अगर मुझे खुशी मिलनी है तो अल्लाह ने देनी, और औलाद को भी खुशी अल्लाह ने देनी है। बस जब हम अल्लाह को नाराज कर लेते अपनी औलादों की खुशी के लिए, तो खुशियों गम दोनों उसके हाथ में। वइन्नहु हुवा मा तवाहिया, और ये कि उसी ने मौत दी और उसी ने जिंदगी बख्शी, और ये कि उसी ने नर और मादा का जोड़ा पैदा किया, और एक बूंद से जबकि वो टपकाई जाती है। अल्लाह अकबर, क्या पता चला कि सेक्स डिटर्मिनेशन मेल की तरफ से होती है। कितनी औरतें इस वजह से तलाक दे के घर भिजवा दी गई कि बेटी फिर पैदा हो गई। इस आयत ने 1400 साल पहले वो हकीकत बता दी, ये जो पिछली सदी में डिस्कवर हुई है कि सेक्स की डिटर्मिनेशन बाप की तरफ से होती है। देखिए, जिसम में क्रोमोसोम नाम की एक चीज होती है, एक्स एक्स, दो एक्स लिखेंगे ना, इस फॉर्मेशन से बच्ची पैदा होती है, और एक्स और वाई, ये दो है, एक एक्स है और एक वाई है, ये कॉम्बिनेशन होगा ना तो बेटा पैदा होगा। एक्स एक्स है ना, जब माँ बाप का मिलाप होता है तो औरत की तरफ से या एक एक्स आएगा या दूसरा एक्स, ऑलवेज सेम एक्स ही आएगा। मर्द की तरफ से एक्स भी आ सकता है तो वाई भी आ सकता है। जब बाप का भी एक्स आता है, माँ का भी एक्स आता है, तो बेटी पैदा होती है। माँ से तो एक्स ही आया, बाप से जब वाई आ जाएगा तो बेटा पैदा होगा। 100% ये मर्द की तरफ से, लेकिन उस मर्द के भी हाथ में नहीं है, किसके हाथ में है? वन खलक ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, तो कभी औलाद के होने ना होने, बेटा बेटी को होने पे ना माँ पे डाले ना बाप पे डाले, ये अल्लाह के हुक्म से होती है। और ये कि दूसरी जिंदगी बख्शना भी इसी के जिम्मे है, और ये किसने गनी किया और जायदाद बख्शी, हैं हम गनी? शुक्र कीजिए, हैं हमारे पास जायदादें, अल्लाह का करोड़ शुक्र कीजिए कि अल्लाह ने किसी का मुख्ताज नहीं किया। और ये कि वही शेरा करब है, और ये कि उसी ने आदे उला को हलाक किया और समूद को ऐसा मिटाया कि इनमें से किसी को बाकी ना छोड़ा, और इनसे पहले कौम नूह को तबाह किया क्योंकि वो थे ही सख्त जालिम और सरकश लोग, और ऊंधी गिरने वाली बस्तियों को उठा फेंका, फिर छा दिए इन पर जो वो जो कुछ तुम जानते हो क्या छा दिया, पस से इंसान अपने रब की किन किन नेमतों में तुम शक करोगे। 3 सेकंड तक सोचिए। फबियही आलाई रब्बी का ततमारा, नेमते उसकी दीवी और शक उसी पर ही है। फिर फरमाया, हाजा नजीरो मिनन नुजुरे लूला, ये तो एक डरावा है पहले आई हुई नसीहतों की तरह, या ये तो एक तंबीह है पहले आई हुई तंबीहात में से, आने वाली घड़ी करीब आ लगी है। क्या है ये, मेरी मौत और क्या, या हम सब की क्यामत जो किसी भी वक्त आ जाएगी? क्या मुझे यकीन है कि मेरी मौत का वक्त करीब है? अगर हमें पहले पता लग जाए कि मेरी मौत का वक्त करीब है तो क्या करूंगी? कुछ भी नहीं करूंगी, वही करूंगी जो अभी कर रही हूं। बल्ला ही, हमें यकीन ही नहीं आकर डॉक्टरों पे, हम कहेंगे नहीं ऐसे कहते हैं, और डॉक्टरों के कहने से कभी मौत आती है? फिर तो सारे बीमार पहले मर जाए, और आपने कई देखे होंगे कई सालों से बिस्तर पे और जवान बच्चे चले गए। तो जब मौत को करीब समझेंगे ना फिर बात समझ आती है। फरमाया, और जब वो आएगी तो अल्लाह के सिवा इसको कोई हटाने वाला नहीं, अब क्या यही वो बातें हैं जिन पर तुम इजहार ताज्जुब करते हो, हंसते हो रोते नहीं और गा बजा कर इन्हें डालते हो? अल्लाह अकबर, किस कल्चर पे तनकीद है इन आयतों में। रोते धोते किस वक्त है, जब कोई अपनी जिंदगी का गम मिलता है, कुरान सुनते वक्त भी हंसते हैं, तमाशा बना लिया दीन को, कभी तालियां साथ पीटते हैं, कभी म्यूजिक सुनते हैं, कभी राग रंग लपते हैं, कभी कुछ इशारा है इसमें सामे धुन में गाने की तरफ। अरब लोग गाने बजाने को समत कहते थे, रातों को महफिलें सजाते थे, महफिले मौसीकी, महफिले गजलियात, और वहां जो जज्बात फिर शेयर हो रहे होते हैं एक दूसरे की आंखों के रास्ते से, और उस वक्त किसी की बीवी किसी का शौहर, और क्या हालात होते हैं। अल्लाह कहते दीन को खेल समझते हो? कई ऐसे लोग हैं जो कभी शायद दीन की महफिल सजाए ना सजाएं, लेकिन ऐसी महफिलें दीन के नाम पे सजाते हैं कि आज कवालियों की रात है, और वहां जाके कभी सुना तो करें कि वो क्या, अल्लाह माफ करे एग्जैजरेशन और क्या कुछ होता है। तो दुआ कीजिए हमें दीन के मामले में अल्लाह संजीदा करते हैं। कभी आपके बच्चे खेलते कूदते डॉक्टर बने, क्या सिर्फ तमाशों के साथ मास्टर्स होता है? तो दीन को आज हमने क्या खेल समझा? अल्लाह कहते दीन की बात पर तुम्हें ताज्जुब है, अल्लाह की बात समझ आती ही उसे है जो संजीदगी से सुने। तो याद रखे, हर वक्त फन का माहौल मस्जिदों में भी बना देंगे ना, फिर भी अल्लाह नहीं मिलेगा। लोग तो बहुत आएंगे, खाना के वक्त खाना खा के चले जाएंगे, खेल के वक्त खेल कूद के चले जाएंगे, आप रात के स्लीप ओवर रखिए वो जिन्नों की कहानियां स्टोरियां सुन के फुटबॉल खेल के चले जाएंगे। करो क्या, फसजुदू लिल्लाहि वाबुदू, झुक जाओ अल्लाह के आगे और बंदगी बजा लाओ। आयते सजदा करेंगे इंशाल्लाह हम भी।